और फिर साधुओं की सेवा भी क्यों करते हो, दवाई क्यों देते साधु को? जब पुण्य से ठीक होता है सब, रोग कैसे ठीक होगा भाई आपके सिद्धांत के अनुसार बताओ? दवाई से ठीक होगा कि पुण्य से ठीक होगा? उनके हिसाब से, हम आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं, बात हमारी उनसे चल रही थी। तो फिर ये प्रश्न था हमारा कि रोग कैसे ठीक होगा। अब जब रोग पुण्य के बिना ठीक नहीं होता तो फिर साधु की सेवा व्यर्थ है, और दवाइयाँ क्यों खिलाना साधु को फिर बिना मतलब के? तो ऐसा एकांत नहीं है कि सब कुछ कर्म से ही होता है। कर्म और नोकर्म का ऐसा विचित्र मेल है, वो बड़े बड़े आचार्य और फिर जो शास्त्रों के रहस्य वेत्ता है वो उसको समझते हैं। और इसीलिए तो सामान्य लोगों को कहा कि तुम गुरु की शरण में जाओ और गुरु जैसा कहते हैं वैसा करो, अपने दिमाग से मत चलना। क्योंकि अपने दिमाग से चलोगे तो फिर तुम्हें तो अकल है नहीं ज़्यादा, तो तुम भटक जाओगे कहीं ना कहीं। तो कर्म और नोकर्म का योग जिसको समझ में नहीं आता वो बहुत भटकता है। सही बात है, हमने एक बार उदाहरण दिया था कि आप ये कहो कि पाप से अशुभ का संयोग होता है और पुण्य से शुभ का संयोग होता है, ऐसा अगर आप जिद पकड़ लो, तो फिर हमारा प्रश्न ये था कि आप गर्मी के दिन में धूप में बाहर खड़े हो जाओ, ठीक है, ऊपर छतरी लगा लेना, हमारी तरफ से उसकी छूट है, लेकिन आगे का जो प्रयोग है वो करके हमें बतलाना कि क्या सब कुछ कर्म से ही होता है या कुछ नौकर्म का संयोग भी दम रखता है। ये हमारा प्रश्न था। क्या है, वहाँ जाकर छतरी लेकर खड़े हो जाना, सिर पर मत लगने देना धूप, लेकिन नीचे चप्पल से बाहर निकालना पड़ेगा पैर, और एक पैर बाहर निकाल कर धरती पर रखना। अब क्या हुआ, हमारा प्रश्न ये है, क्या असाता के उदय से पैर बाहर निकला? क्योंकि अभी जल रहा है पैर, और जलने का मतलब असाता का उदय है। तकलीफ कैसे होती है, साता के उदय से कि असाता के? बताओ, जवाब दो सीधा सीधा। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको लेक्चर नहीं सुना रहे। कष्ट किस कर्म से होता है, असाता के उदय से। तो पैर किस कर्म से निकला बाहर, असाता के उदय से। बस यही हम पूछना चाह रहे थे। यहीं पर तो सब भटक रहे हैं पूरी दुनिया। जितने अपने आप को अच्छे निखरे हुए स्वाध्यायी समझने वाले लोग हैं वो सब भटक रहे हैं। कहाँ से असाता का उदय आ गया वहाँ चप्पल से बाहर पैर निकालते समय? वहाँ तो बड़े आनंद में था, उसको एक कण मात्र भी कष्ट नहीं था। ऊपर छतरी थी, नीचे जूते थे, चप्पल थे, पैर निकाला तब भी तकलीफ नहीं हुई। हुई क्या, पैर निकालते समय तकलीफ थी क्या? नहीं थी। लेकिन नीचे धरती पर जैसे ही पैर रखा, तकलीफ कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई? या फिर आप ऐसा मानो कि वो तो ऐसा था कि भाई उसका असाता का उदय आने वाला था, इसलिए उसने पैर बाहर निकाला। ऐसा अगर मानते हो तो इसमें सबसे बड़ा दोष ये आएगा कि जैन दर्शन में कभी भी उत्तरवर्ती कारण नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत सैद्धांतिक बात है, पकड़ने की बात। जैन दर्शन में कारण जो होता है वो समकालीन हो सकता है या पूर्वकालीन हो सकता है, भविष्यकालीन कभी नहीं हो सकता कारण। नहीं आया समझ में? पूर्वकालीन कारण का खुलासा यह है कि आपने अग्नि पर सिगड़ी पर खिचड़ी रखी बनाने के लिए, तो कुछ समय की आराधना करने के बाद वो खिचड़ी बनकर के तैयार हो गई। तो कारण कैसा हुआ, पूर्वकालीन हुआ। खिचड़ी बाद में बनी, अग्नि पहले, गैस पहले जलाते हुए फिर खिचड़ी पहले बनती है, ये बताओ। तो फिर अग्नि पहले थी और खिचड़ी बाद में थी, तो खिचड़ी का कारण जो अग्नि है वो पूर्वकालीन हो गया, एक कारण। हाँ, काल की अपेक्षा से कारण के ये दो भेद बताए जा रहे हैं, एक कारण ये हो गया। अब दूसरा ऐसा भी कारण बताया है जैन आगम में, इसको जो लिखना चाहे लिख भी सकता है। दूसरा ऐसा भी कारण है, नहीं तो क्या है कि सुनना तो बहुत अच्छी बात है पर आपकी याददाश्त पर हमें ज़्यादा भरोसा नहीं है। पूर्वकालीन कारण तो स्पष्ट है कि अग्नि, और कार्य क्या हो गया, खिचड़ी। खिचड़ी का कारण अग्नि है, तो वो अग्नि पहले जरूरी है, बाद में खिचड़ी बनेगी, पूर्वकालीन कारण। और समकालीन कारण भी होता है जैन दर्शन, जैसे दिया और प्रकाश। दिए की ज्योति प्रकाश का कारण है, तो वो दिए की ज्योति क्या पहले जलती है और प्रकाश बाद में आता है, या एक साथ होते हैं दोनों काम? थोड़ा सोच करके जवाब देना। देखो दिया जो है ना, बिना जला हुआ वो कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ तेल भरने में उपयोगी है, लेकिन प्रकाश किससे होता है? उसकी ज्योति से। मतलब वो जो लौ है, वो छोटी सी एक अग्नि की ऐसी आकृति होती है, एक दीपक की लौ, वो प्रकाश का कारण है। तो वो पहले है और प्रकाश बाद में है, या दोनों साथ साथ में है? जिस क्षण वह ज्योति प्रकट होती है उसी क्षण प्रकाश होता है। तो फिर भी कारण कार्य भाव है दोनों में। प्रकाश का कारण क्या होगा? वो ज्योत। तो ज्योत कारण हो गया और प्रकाश कार्य हो गया। तो ऐसा भी कारण कार्य भाव जैन दर्शन में मान्य है। कैसा? समकालीन। एक पूर्वकालीन और एक समकालीन। लेकिन ऐसा कोई कारण कार्य भाव जैन दर्शन में नहीं है कि कुछ होने वाला हो और फिर उसके कारण यहां से पैर निकल जाए। अरे समझ, मोक्ष होने वाला है इसलिए दीक्षा ले ले, दीक्षा लेता है इसलिए मोक्ष होता है, या मोक्ष होने वाला होता है इसलिए दीक्षा लेता है, ये बताओ पहले। अगर कोई ये कहे कि मोक्ष होने वाला है इसलिए दीक्षा ले रहा है, तो फिर वो जैन दर्शन से बिल्कुल अपरिचित है, उसको मालूम ही नहीं है कारण कार्य व्यवस्था। ये भी एक मिथ्या मत है, याद रखना। भवितव्यवाद, नियतिवाद जिसका नाम है, नियतिवाद गुमटसार ग्रंथ में इसको मिथ्या मत कहा है। 363 मतों में से एक मत है जो ये मानता है कि ऐसा होना था इसलिए हुआ। वो इसलिए जो लग गया ना बीच में, इसलिए का मतलब क्या है? कारण। आइसक्रीम खा ली है इसलिए सर्दी हो गई, इसलिए बोलते ना, इसलिए का मतलब उसके कारण। तो ऐसा होना था जो अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होना है। तो क्या वाक्य देखिए कैसा है, होना था। क्या होना था? मोक्ष, इसलिए दीक्षा ली, इसलिए रत्नत्रय धारण किया, इसलिए रत्नत्रय प्रकट हुआ। तो फिर ऐसा कहना चाहिए था उमा स्वामी आचार्य महाराज को, जैसे उनने क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसके बदले ये कह सकते थे, मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग। समझ में आ रहा है गिरी? मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपाय क्या हुआ, और मोक्ष के पहले एक विशेषण और लगा दो, भावी मोक्ष है, क्योंकि भविष्य में मोक्ष होने वाला है, इसलिए वो किसका कारण बनेगा? अभी जो रत्नत्रय प्रकट करना है उसका कारण क्या? भविष्य में होने वाला मोक्ष। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा कोई कारण माना नहीं गया है जो भविष्य में होता हो। भविष्य में कारण हो और वर्तमान में कार्य हो जाए, ये कैसी उठपटांग व्यवस्था है? तो इसी व्यवस्था को मानने वाले को मिथ्या दृष्टि का है। गुमटसार जीव कांड में, गुमटसार जीव कांड में 363 मतों का वर्णन है। तो उसमें यह भी माना गया है कि जो ऐसा मानता है कि ऐसा होने वाला था इसलिए ये हुआ, तो उसकी मान्यता मिथ्या है। तो इसलिए जो दृष्टांत हम दे रहे थे, हम अभी तक आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न के बीच में जो प्रश्न उठ जाते हैं उनका समाधान करते हुए पूछ रहे हैं। क्या था प्रश्न? पैर क्यों जला असाता के उदय से? ठीक है, असाता का उदय क्यों आया? बताओ। अथवा पैर उसने वहां चप्पल से बाहर क्यों निकाला? क्या जवाब है इसका? यदि ये कहो कि असाता का उदय आने वाला था, ये क्या हो गया? भविष्य, इसलिए उसने पैर निकाला। तो ये जैन दर्शन में जवाब अमान्य हो गया। और देखिए फिर इसके आगे का प्रयोग और बता रहा है, अभी इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को। वापस उसने चप्पल में डाल दिया पैर, अब कहां से सुकून मिला उसको? या फिर ये कहो कि वहां से पैर इसलिए हटाया क्योंकि साता का उदय आने वाला था, ऐसा कह दो। चप्पल में डाल दिया उसने, फिर सुकून मिल गया उसको, शांति मिल गई, फिर वापस उसने नीचे डाला पैर। ऐसा आप 50 बार करा सकते हो, लेकिन हर बार पैर नीचे पड़ने पर ही जलेगा और ऊपर वापस ले लेने पर सुकून महसूस होगा। क्या साता और असाता का उदय इस प्रकार पैरों को नचा रहा है? यहां बहुत बारीक समझने की बात है। और फिर इसी संबंध में हमने एक बार दृष्टांत दिया था, आपको याद हो, शीतकाल में 100 योजन तक जिनेंद्र भगवान के प्रभाव से सुभिक्ष होता है। जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशयों में पहला अतिशय क्या है? 100 योजन तक सुभिक्ष। सुभिक्ष का मतलब प्रचुर मात्रा में अन्न आदि सामग्री का उपलब्ध हो जाना। अब इसमें अगर कोई कहे, यही देखो पुण्य पाप का एकांतवादी यहां भी भटक जाता है। उसके लिए फिर हमने 2 खंडन दिए थे निराकरण, आपको याद होंगे। याद है किसी को इतने लोगों में? एक दृष्टांत उस मेंढक का था, याद आ गया? आप तो पूरा एकदम बटन दबाओ तो चालू हो जाता, रिवर्स हो गई ना कैसेट फट से। कैसेट भी नहीं, वो तो सीडी है, टप से बटन दबाया तो फिर वो वहां चला गया शीतकाल में। बहुत अच्छी बात है। ये समझने की बात ये थी कि क्या तीर्थंकर के आने पर 100 योजन तक सुभिक्ष होता है या वहां के जीवों के पुण्य से होता है? ये कर्म और कर्म फल का जो सिद्धांत है उसको गलत समझ लेने का परिणाम निकला है कि लोग इतना एकांतवादी हो गए कर्म के प्रति कि नौकर्म के महत्व को ही उन्होंने उड़ा दिया, नौकर्म के प्रभाव को ही वो भूल गए। तो क्या कहेंगे वो कि 100 योजन तक जब जीवों के पुण्य का उदय होता है तब सुभिक्ष होता है, और फिर चूंकि तीर्थंकर आए हैं, तीर्थंकर बड़े आदमी हैं, इसलिए सम्मान और श्रेय किसको मिलेगा? बड़े को। जैसे सामने जितना कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है तो वहां जो लोग वहां पर दिन रात पसीना बहा रहे हैं उनका नाम तो किसी को भी नहीं मालूम। नाम किनका होने वाला है? जो गण्यमान पुरुष है समाज के उनका नाम होगा। उसी प्रकार देखो, ये दृष्टांत आपको किसी प्रकार से तिरोहित करने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये एक समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं कि नाम बड़े का होता है। ये तर्क वो दे रहे हैं जो कर्मवाद का एकांत करने वाले हैं। क्या तर्क दे रहे हैं? कि हो रहा है इनके पुण्य से। सुभिक्ष किससे हो रहा है? वहां के जीवों के पुण्य से, लेकिन श्रेय तीर्थंकर भगवान को मिल रहा है। अब इसका निराकरण हमने क्या दिया था? 2 दृष्टांत दिए थे। एक तो मेंढक का था। महावीर भगवान के समवसरण के बाहर हाथी के पैर के नीचे दब गया। अब प्रश्न यह है कि 100 योजन तक यदि जीवों के पुण्य का उदय हो तो मेंढक कैसे दबा? पुण्य के उदय से दब सकता है क्या? कभी ऐसा हुआ है इतिहास में कि पुण्य के उदय से किसी का एक्सीडेंट हो गया हो? कहीं सुना आपने, कहीं पुराणों में या शास्त्रों में या कहीं चर्चाओं में कि भाई उसका एक्सीडेंट हुआ, भयंग तेज पुण्य का उदय था उसका और एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कभी आया है कहीं? ये बात गले भी नहीं उतर सकती कि पुण्य के उदय से दुर्घटना होती हो। तो मेंढक जो हाथी के पैर के नीचे दबा वो इस बात का सबूत है कि 100 योजन तक सब जीवों के पुण्य का उदय नहीं हो सकता। और दूसरा दृष्टांत क्या था? उसके भाव भी पुण्य रूप हो सकते हैं। मेंढक के भाव कैसे थे? भाव उसके पुण्य बंध के प्रायोग्य थे क्योंकि वो भक्ति के भाव से जा रहा था मुंह में फूल लेकर के, तो उसके भाव कैसे हुए? अशुभ भाव तो नहीं हुए, लेकिन उदय कैसा था? जिस उदय में दुर्घटना घटी वो उदय तो पुण्य का नहीं हो सकता। अब दूसरा दृष्टांत क्या दिया था आपको याद होगा? एक काल सौकरिक नाम का कसाई था जो राजगृह में प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता था और पूरे मगध में सप्लाई करता था। वो मीट मांस पूरे मगध में उसकी तरफ से सप्लाई होता था। अब प्रश्न ये है कि यदि 100 योजन तक सबके पुण्य का उदय हो तो कसाई जिनका वध कर रहा है उन भैंसों के भी पुण्य का उदय मानना ही पड़ेगा। और फिर अगर ऐसा मानेंगे कि पुण्य के उदय में भैंसे कट गए 500, तो ये बात किसके गले उतरेगी? क्या ये कोई स्वीकार करेगा कि उनके पुण्य का उदय था और फिर भी कसाई ने उनको मार डाला, संभव ही नहीं है। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि 100 योजन तक सबके पुण्य का उदय नहीं होता, वो तो तीर्थंकर के पहुंचने का प्रभाव होता है कि वहां 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। निमित्त को इतना मेटने की कोशिश करना उचित नहीं है जैन दर्शन को मानने वाले के लिए। निमित्त का भी अपना असर है और उपादान का अपना असर है। वो निमित्त तीर्थंकर भगवान जो निमित्त है वो भी अपने आप में तो उपादान ही है। अब जैसे कोई ऐसा कहता है कि भाई उपादान की शक्ति जब जागृत होती है तब निमित्त को उपस्थित होना ही पड़ता है। निमित्त क्या कर सकता है, निमित्त को तो खींच करके आना पड़ता है। तो उसमें सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि निमित्त को खींच करके आना पड़ता है, इसका मतलब ये हो गया कि उपादान स्वतंत्र है, निमित्त परतंत्र है। यदि ऐसा माना जाए कि निमित्त परतंत्र है तो फिर इस मान्यता का खंडन हो जाएगा कि सब द्रव्य स्वतंत्र है। आ रहा समझ में? नहीं आया समझ में? यदि ऐसा मानोगे कि उपादान स्वतंत्र है, जब उसकी योग्यता होती है तब निमित्त स्वयं आ जाता है, जब लोगों का पुण्य होता है तब तीर्थंकर को आना पड़ता है वहां पर, 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है, ऐसा अगर एकांत से मानोगे तो क्या दिक्कत आएगी? कि वो निमित्त पराधीन हो गया। और निमित्त पराधीन हो गया तो फिर सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक द्रव्य तो स्वाधीन और दूसरा द्रव्य पराधीन, ऐसा कौन सा सिद्धांत है भाई जैन दर्शन? ऐसा पक्षपात क्यों? जब सारे द्रव्य स्वतंत्र और स्वाधीन है तो फिर निमित्त पराधीन क्यों? निमित्त भी तो एक द्रव्य है ना। तो इस प्रकार एकांतवाद का परिणाम हमेशा विसंगति पूर्ण होता है और फिर सही निर्णय वहां कभी भी हो नहीं सकता। तो कर्म और नोकर्म दोनों का सिद्धांत है। बात यह है कि चप्पल से बाहर जब पैर निकालते हैं और फिर स्पर्शन इंद्रिय का संयोग उस उष्ण धरती से होता है तो उसके निमित्त से असाता कर्म के परमाणुओं की उदीर्णा हो जाती है और उदीर्णा के माध्यम से उदय को प्राप्त हुए वो असाता के परमाणु वेदना का कारण बन जाते हैं। और फिर वहां से पैर हटा लो, देखो नोकर्म का संयोग दूर हुआ तब क्या होगा? वापस जो सातावेदनी के परमाणु हैं वो उदित होकर के सुख शांति के कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार खूब ठंड लग रही है आपको, आप सोचो कि भाई कर्म के उदय से है वो तो ठंड, तो बैठे रहो रात भर बाहर ठंड में, जब कर्म का उदय आ जाएगा तो फिर ठंड चली जाएगी, कंबल ओढ़कर क्यों सोते हो अंदर में, क्या आवश्यकता है? इस प्रकार उपादान और निमित्त दोनों के सामंजस्य से ही कारण कार्य व्यवस्था सिद्ध होती है जैन दर्शन में। खींचातानी करने से, उपादान की खींचातानी करो तो भी कबाड़ा हो जाएगा, निमित्त की खींचातानी करोगे तो भी कबाड़ा हो जाएगा। और ये जो खींचातानी है वो सिर्फ निश्चय मार्गियों में नहीं किंतु व्यवहार मार्गियों में भी देखी जाती है, क्योंकि जिसने हमसे बात की थी वो तो कट्टर मुनि भक्त, और फिर भी उसका ये कहना था कि नहीं कर्म के उदय से ही सब कुछ होता है, तो फिर हमें ऐसा लगा कि इनको थोड़ा और अध्ययन करना पड़ेगा तब जाकर के बात स्पष्ट हो पाएगी। उनको कुछ ग्रंथ भी कंठस्थ, अष्टपाउड़ वगैरह की गाथाएं भी कंठस्थ थी, लेकिन क्या होता है कि हमारा ये आपसे एक आपको एक जानकारी दे दें कि सिर्फ व्याकरण से आगम का रहस्य पकड़ में नहीं आता। कई लोग सोचते होंगे ना कि महाराज को संस्कृत आती है इसलिए इतना अच्छा अच्छा अर्थ बतला रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। संस्कृत सीख करके कोई और यहाँ पर बैठ करके बतला दे वही अर्थ, असंभव है। उसका कारण क्या है कि ये भाषा का चमत्कार नहीं है, इसमें भाषा की कोई खूबी नहीं है। भाषा से तो शब्दों का अर्थ निकलता है लेकिन उसका भाव कहाँ से पकड़ में आता है? उसका भाव चारों अनुयोगों के अच्छे स्वाध्याय के बिना आ ही नहीं सकता। चारों अनुयोग जिनवाणी माता की कृपा के बिना शास्त्रों का भावार्थ, किसी भी वैयाकरण को बुला लो, राम मूर्ति त्रिपाठी उज्जैन के वैयाकरण बहुत बड़े विद्वान है, साहित्याचार्य है, उनको बुला लो, वो निकाल के बता दे अर्थ न देवाह सूत्र का, क्या अर्थ न देवाह, यही अर्थ निकालेंगे, देव नहीं है। तो व्याकरण से सारे अर्थ नहीं निकलते, कुछ अर्थ प्रसंगों से और चारों अनुयोगों के अध्ययन से और बरसों की मेहनत के बाद निकाले जाते हैं। अभी तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हमें भी समझने हैं, हमें भी बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। कुछ काम की बातें ज़रूर सीखी हमने गुरु कृपा से और जिनवाणी से, जिसके कारण अभी हमें साधना का आनंद प्राप्त हो रहा है अपने जीवन में। कोई अगर पूछे कि दीक्षा लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कई लोगों ने हमसे बोला था कि आप ये सब छोड़ करके पछताओगे। 91 में तो एक ने बोला था कि अगर आप नहीं छोड़ते तो कम से कम 5,000 तो प्रति माह कमाते ही, बोले यहां तक बोला किसी ने, कम से कम 91 की बात है, कम से कम 5,000 कमाते एक महीने में। और फिर एक ने तो हमसे बोला था बहुत पहले कि आप पछताओगे बोले छोड़ने के बाद। अब इन दोनों के कारण हमारी समझ में अब आए। कारण यह है कि उन दोनों को साधना का आनंद रस जीवन में प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वो हमसे भी अपने अनुभव के मुताबिक सही कह रहे थे कि भाई यहाँ कुछ मिलता नहीं है और फिर इतने ठाट को छोड़कर यहाँ आ जाओगे तो लौटना तो नहीं होगा, बदनामी होगी लौटोगे तो आने के बाद पछतावे के सिवाय कुछ नहीं होगा। लेकिन हम आज तक पछताए नहीं हैं, उसका कारण सिर्फ जिनवाणी की कृपा है। पछताए इसलिए नहीं क्योंकि चारों अनुयोगों का जो रस है, मर्म है, उसको पाने वाला कभी पछताता नहीं। वो केवल इस बात पर पछताता है कि मैं जल्दी क्यों नहीं आया माँ की शरण में, मैंने इतने वर्ष वहाँ क्यों गंवा दिए। ये पश्चाताप तो हो सकता है, लेकिन ये पश्चाताप नहीं होगा कि यहाँ क्यों आया। यहाँ आने पर पश्चाताप का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसीलिए हम कई बार लोगों को सचेत कर देते हैं कि भाई हमें देख करके आप वैरागी मत बन जाना, या फिर हम जिस आनंद की बात कर रहे हैं उस आनंद के प्रलोभन में आकर के त्याग अपना मत लेना। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि त्याग करने वाले प्रत्येक साधक को जीवन में वो आनंद मिल ही जाए। वो आनंद दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं होता। कई बार बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े तपस्वियों को भी उस आनंद की उपलब्धि नहीं होती। इसीलिए तो आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा कि जो मुनि पद अंगीकार करके उसको भार समझता है वो दुर्गति का पात्र है। और अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए कभी किसी की कि भाई त्याग करने के बाद भी जीवन का रस नहीं आ रहा है, तो फिर किसी ऐसे के सानिध्य में चले जाना चाहिए, ऐसे साधक के या गुरु के कि जिनके पास कुछ उपलब्धि है। अब कैसे पहचानोगे, तो उसकी एक पहचान वो आम आदमी भी जान सकता है कि जिसको अपने आनंद के लिए पराश्रित न होना पड़े, उसका आनंद वास्तविक आनंद है। यानी जिसका सुख दूसरे पर न टिका हो उसका सुख सच्चा सुख है। यानी भक्त लोग आ रहे हैं तो फिर गुरुजी खुश हो रहे हैं, ये खुशी गुरु का लक्षण नहीं है, ये सच्चे आनंद का स्वरूप नहीं है। और नहीं आ रहे हैं तो सूनापन महसूस हो रहा है, ये सूनापन भी साधना का स्वरूप नहीं है। साधना में क्या भीड़ और क्या एकांत, वहां तो जहां रहो भीड़ में भी वैरागी है, अकेला है, और अकेले में भी आनंद से है, दुख से रहित है। तो इस प्रकार संसार में कितने प्रकार के दुख हैं, उन सब का चित्रण इस अनुप्रेक्षा के अंतर्गत अभी चल ही रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। आगे का प्रकरण अपन आगे देखेंगे।